ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल भारत के बीच मौजूदा सीमा विवाद का कूटनैतिक तौर पर समाधान करने को लेकर सरकार को बताया प्रतिबद्ध। सीमा रक्षा के लिए काम हो रहा है, इसलिए अदालत से कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत को दिया जवाब। नेकपा स्थायी कमेटी की बैठक में दो अध्यक्षों के राजनीतिक प्रतिवेदन पर विचार विमर्श रहा जारी। सहमति न बन पाने के बाद नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति की बैठक परसों तक के लिए हुई स्थगित। निर्वाचन आयोग ने आगामी माघ 9 को होने वाले राष्ट्रीय सभा चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यक्रम किया सार्वजनिक और अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा सदन में अपने खिलाफ महाअभियोग के बने आसार से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्षी को दिया करारा जवाब। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल भारत के बीच मौजूदा सीमा विवाद का कूटनैतिक तौर पर समाधान करने को लेकर सरकार को प्रतिबद्ध बताया। सीमा विवाद के विषय में सुप्रीम कोर्ट को पेश किए अपने जवाब में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि सीमा सुरक्षा के लिए सशस्त्र प्रहरी बल की यूनिट को सीमा क्षेत्रों में परिचालित किए जाने के साथ साथ सीमा की रक्षा को लेकर समय समय पर जरूरी काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा जवाब में कहा गया है कि नेपाल की सीमा रक्षा और नेपाल के भूभाग के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई हो रही है और कूटनैतिक तौर पर समाधान को लेकर सम्मानित अदालत से कोई आदेश आवश्यक नहीं है, इसलिए इस संबंध में दर्ज की गई याचिका को खारिज किया जाना उचित होगा। ज्ञात हो कि कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूभाग वापस लाने के आदेश जारी करने की मांग करते हुए अधिवक्ता कंचन कृष्ण न्योपाने ने याचिका दर्ज की थी, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। जवाब में इस बात का भी उल्लेख है कि भारत सरकार द्वारा डेढ़ महीने पहले यानी 2 नवंबर को जारी किए गए भारत के राजनीतिक नक्शे को सुधारने के लिए कहा जा चुका है और कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायत स्थानों में सीमा समस्या समाधान को लेकर सरकार क्रियाशील है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमेटी की आज की बैठक में दो अध्यक्षों के राजनीतिक प्रतिवेदन के ऊपर विचार विमर्श जारी रहा। पार्टी मुख्यालय धुम्बाराही में हुई बैठक में राजनीतिक प्रतिवेदन में उल्लिखित सरकार और पार्टी के कामों को प्रभावकारी बनाने लगायत विषयों में 12 स्थायी कमेटी सदस्यों ने अपना अपना विचार रखा। इस दौरान उन्होंने संगठन निर्माण के काम को सुदृढ़ करने के साथ साथ गुटबंदी को समाप्त करने और सरकार के कामों को और प्रभावकारी बनाने लगायत सुझाव दिए थे। ये जानकारी पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने दी। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति की आज के लिए निर्धारित बैठक फिर स्थगित हो गई। नेपाली कांग्रेस के आगामी महाधिवेशन की कार्यतालिका, कांग्रेस संबंध विभागों के गठन लगायत विषयों में सहमति न जुट पाने के कारण बैठक स्थगित हुई है। कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति बैठक पूछ 4 गते शुक्रवार के दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक किया है। आगामी माघ 9 को होने वाले राष्ट्रीय सभा चुनाव के लिए पूस 20 को उम्मीदवारी पंजीकरण होगा। कार्यक्रम के मुताबिक चुनाव के लिए मतदाता नामावली प्रकाशन और प्रकाशित नामावली के ऊपर दावा विरोध संबंधी शिकायत पंजीकरण पूस 17 को, शिकायतों के तहत छानबीन कर अंतिम नामावली प्रकाशन पूस 19 को और उम्मीदवारी पंजीकरण व नामावली प्रकाशन पूस 20 को होगा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल ने कहा कि लोक सेवा आयोग की भूमिका को संकुचित बनाने की सरकार की नियत नहीं है। प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा अनुशासन समिति में लोक सेवा आयोग संबंधी कानून को संशोधित और एकीकृत करने के लिए बने विधेयक पर धारागत विमर्श के दौरान मंत्री ढकाल ने ये बात कही। उन्होंने कहा, लोक सेवा आयोग को सरकार सक्षम, पारदर्शी और सम्मानित संस्था के रूप में ही देखना चाहती है। प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अंतर्गत विभिन्न निकायों में बजट का विनियोजन होने के बावजूद इसका सही तरीके से नियमन नहीं हो पाया है। प्रतिनिधि सभा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण उपसमिति की आज हुई बैठक में आयोजना परियोजना के निदेशक डॉ रेवती रमन पौड़ेल ने बताया कि परियोजना का 53.6% बजट प्रदेश अंतर्गत रहे, निकायों द्वारा खर्च किए जाने के बावजूद खर्च का पूर्ण विवरण नहीं भेजा गया है। गौरतलब है कि ये आयोजना विभिन्न स्थानों में जोन सुपर जोन पॉकेट के जरिए उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को सहयोग करती आ रही है। अमेरिकी सरकार ने नेपाली सेना को 2 M20 स्काई ट्रक विमान हस्तांतरण किया है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में आज आयोजित कार्यक्रम में नेपाल के लिए अमेरिकी राजदूत रेंडी डब्ल्यू वेरी ने नेपाली सेना को जहाज हस्तांतरण किया। कार्यक्रम में प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा ने कहा कि अमेरिकी सरकार द्वारा दी जा रही ट्रेनिंग एवं सहायता से दोनों देशों के संबंध विस्तार में सहायता होगी। इसी अवसर पर अमेरिकी राजदूत बेरी ने बताया कि नेपाल की आवश्यकता को मद्देनजर करते हुए ये सहायता प्रदान की गई है। साथ ही उन्होंने कहा ये विमान दोनों देशों के बीच के संबंध को प्रगाढ़ बनाने में सेतु की तरह काम करेगी। गौरतलब है कि अमेरिकी सरकार से प्रदान की गई सहायता में से ये अब तक की सबसे बड़ी सुरक्षा अनुदान है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छ त्यसो नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। तत्कालीन जनकपुर अंचल अस्पताल और मौजूदा प्रादेशिक अस्पताल के दो चिकित्सकों के विशेष अदालत काठमांडू ने बलात्कार का झूठा प्रतिवेदन देने के मामले में दोषी ठहराया है। विशेष अदालत के न्यायाधीशों कृष्णगिरी शांति सिंह थापा और चंद्र बहादुर सारू के इजलास ने डॉ विजय कुमार सिंह और डॉ रंभा गोइत को दोषी ठहर किया। उन लोगों को इस अपराध के लिए 6 महीने कैद और 25,000 रूपये की सजा सुनाई गई है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने सरकार अस्पताल में कार्यरत उन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया था। गौरतलब है कि 2075 भाद्र 8 गते धनुषा की जनक नंदिनी गांव पालिका वार्ड नंबर 2 की बलात्कृत बच्ची का नमूना परीक्षण करने के बाद डॉ सिंह और गोइत ने बच्ची का बलात्कार नहीं हुआ है ऐसा रिपोर्ट तैयार किया था। तहकीकात के दौरान ये पाया गया है कि अपराधी को बचाने के लिए दोनों डॉक्टरों ने ऐसा प्रतिवेदन तैयार किया था। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश में अलग अलग देशों के लिए गैर आवासीय राजदूतों की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति भंडारी ने मलेशिया के लिए नेपाली राजदूत उदयराज पांडे को ब्रुनाई, थाईलैंड के राजदूत गणेश प्रसाद ढकाल को कम्बोडिया, लाओस और वियतनाम राष्ट्र संघ के लिए आवासीय प्रतिनिधि अमृत बहादुर राय को इक्वेडर, कनाडा के लिए नेपाली राजदूत भृगु ढुंगाना को क्यूबा के गैरावासीय राजदूत के पद पर नियुक्त किया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमरे द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेखित है। चितवन में विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण परीक्षण प्रयोगशाला संचालित की गई है। भरतपुर 2 क्षेत्रपुर में रहे महानगर फलफूल तथा सब्जी बाजार में बेचने के लिए लाई गई सब्जियों और फलों में संभावित विषादी की जांच कल से शुरू किया गया है। प्रदेश सरकार भरतपुर महानगर पालिका कृषि ज्ञान केंद्र और महानगर फलफूल तथा तरकारी बाजार की साझा पहल में प्रयोगशाला को संचालित किया गया है। मकवानपुर प्रहरी ने रामेछाप दोरम्भा गांव पालिका 5 के 21 वर्षीय नरेश थापा मगर के अपहरण में संलग्न होने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कैलाली धनगढ़ी के और हाल में काठमांडू में रहने वाले 24 वर्षीय आशीष सीजापति, कंचनपुर श्रीपुर की 29 वर्षीय सुनीता धामी, धादिंग की नेत्रवती ढुसजु गांवपालिका के कृष्ण गुरुंग और वहीं के आसिक लामा शामिल है, ये जानकारी पुलिस ने दी। आज सुबह अगवा कर किए गए थापा मगर को दोपहर को हेटौड़ा 9 स्थित सरस्वती तामांग के घर में बंधक बनाकर रखे होने की स्थिति में अपहरण मुक्त किया गया है। बैतरी में जीप उलटने से धनगढ़ी के और हाल में बैतरी के पुरघाट पुलिस चौकी हाट में कार्यरत पुलिस जवान सुदीप श्रेष्ठ की मौत होने की जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा सदन में अपने खिलाफ महाअभियोग के बने आसार से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पर जवाबी हमला बोला है। उन्होंने पूरी मुहिम को अवैध और भेदभाव वाला बताया है, जिसके जरिए डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार को गिराना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, विपक्षी ने लोकतंत्र के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है और जवाब डालकर राष्ट्रपति पद से उन्हें हटाना चाहता है। इसके लिए वह यूक्रेन में जोसेफ बिडेन के खिलाफ जांच का सहारा ले रहा है। ट्रंप ने ये टिप्पणियां प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नेसी पेलोसी को लिखे पत्र में की है। सदन में सांसद महाअभियोग प्रस्ताव में ट्रंप पर लगाए जाने वाले आरोपों पर बहस करने वाले हैं। इस बहस में तय होगा कि ट्रंप पर किन आरोपों पर महाअभियोग चलाया जाए। अपने 6 पेज के पत्र में ट्रंप ने महाअभियोग के लिए की गई जांच पर आपत्ति जताई है। गुजरात में सौराष्ट्र के संभालिया गांव में एक महिला को चौथी संतान भी लड़की होने पर उसके पति ने 3 बच्चियों को कुएं में फेंककर खुद जहर पीकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों बच्चियों के शव को कुएं में से बाहर निकाला। मृतक रशिक को लड़का चाहिए था, लेकिन 15 दिन पहले ही उसकी पत्नी लड़की को जन्म दिया था। उसने हताशा में यह कदम उठा लिया। जानकारी के मुताबिक जूनागढ़ जिले की भेषाण तहसील के संभालिया गांव में रशिक भाई देवा भाई शोलांकी 35 वर्ष की अपनी पत्नी तथा 4 पुत्रियों के साथ रहता था। बुधवार सुबह अपनी 3 पुत्रियों अंजलि, रिया और जलपा को मोटरसाइकिल पर बैठाकर मंदिर दर्शन के लिए ले गया था, जबकि उसकी पत्नी और नवजात बच्ची घर पर अकेली थी। रशिक ने अपनी 3 बच्चियों को मंदिर में दर्शन कराने के बाद भेषाण की सीमा में स्थित एक कुएं के पास ले गया, जहां एक के बाद एक तीनों बच्चियों को कुएं में फेंक दिया। इसके बाद घर आकर जहर पीकर आत्महत्या कर ली। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17.9 और न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल भारत के बीच मौजूदा सीमा विवाद का कूटनैतिक तौर पर समाधान करने को लेकर सरकार को बताया प्रतिबद्ध। सीमा रक्षा के लिए काम हो रहा है, इसलिए अदालत से कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत को दिया जवाब। नेकपा स्थायी कमेटी की बैठक में 2 अध्यक्षों के राजनीतिक प्रतिवेदन पर विचार विमर्श रहा जारी। सहमति न बन पाने के कारण नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति की बैठक परसों तक के लिए हुई स्थगित। निर्वाचन आयोग ने आगामी माघ 9 को होने वाले राष्ट्रीय सभा चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यक्रम किया सार्वजनिक और अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा सदन में अपने खिलाफ महाअभियोग बने आसार से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्षी को दिया करारा जवाब। इसी के साथ कल तक के लिए हिंदी समाचार से दीजिए आज्ञा। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।